पृष्ठ संख्या 7, अध्याय 1। सुबह सवेरे जब चौधरी अपनी कोठरी से निकला तो हवा में कोहरा छाया था, नील मायल धुंधला सा कोहरा, जो किसी दिन सुबह उठो तो अकारण ही चारों ओर नजर आने लगता है, और साथ ही सुइयां चुभोती ठंडी हवा। उसने आंख उठाकर ऊपर की ओर देखा, मटमैले बादल जैसे रात ही रात में नीचे उतर आए थे। इसी कारण सवेरा हो जाने पर भी दिन का गुमान नहीं होता था। बरसेगा, आज जरूर बरसेगा, चौधरी बुदबुदाया, पर बस्ती जाग गई थी और दिन का व्यापार छिटपुट शुरू हो गया था। बगल वाली कोठरी में से विशेषर की पत्नी जमुना सिर पर घड़ा रखे नल पर से पानी लेने के लिए निकली और ढलान चढ़ने लगी। ऊपर बड़े नल के ही पास ढलान के सिरे पर गोविंदी की चाय पानी की दुकान खुल गई थी। घनी धुंध में से भी उसकी बत्ती की लौ नजर आ रही थी। चौधरी ने घूमकर ढलान के नीचे नजर दौड़ाई। ऊबड़ खाबड़ गली के दोनों ओर खड़ी छोटी छोटी कोठरियों में भी हरकत शुरू हो गई थी। किसी किसी कोठरी के बाहर चूल्हा जलने लगा था। कहीं कहीं बस्ती की कोई लड़की चादर में मुंह से लपेटे ढलान उतरती हुई बस्ती के बाहर लोगों के घरों में चौकावर्तन करने जा रही थी। बाहर की बड़ी सड़क अभी से चलने लगी थी। दूर से लारियां, मोटरों के भोपुओं की आवाज़ें धुंध और कोहरे में लिपटी सी सुनाई पड़ने लगी थीं। हर बार बारिश का समय होने पर चौधरी बड़बड़ाता था। आज तो धुंध भी थी और बादल भी घिरे थे, जो ना जाने कब बरसने लगे। आज तो अपने अड्डे पर जाने में कोई तुक नहीं। कौन इस मौसम में बाल कटवाने या हजामत बनवाने पृष्ठ संख्या 8 आएगा। आज का दिन भी बर्बाद गया समझो। उसका मन हुआ बैठकर बीड़ी सुलगा ले। उसने अपने नीले कुर्ते की जेब से बीड़ी निकाली भी, पर फिर अपनी ही कोठरी के बाहर बैठने के बजाय बाहर निकल आया और गोविंदी की चाय की दुकान की ओर कदम बढ़ा दिए। कल हीरा और धन्ना और बस्ती के कुछ और लोग हाकिम से मिलने गए थे। दिन भर बाहर बने रहे, कुछ पता तो चले। स्याह सफ़ेद क्या कर आए हैं? सरकार ने क्या कहा है, क्या फैसला दिया है? सुबह सवेरे हर रोज अपने अपने काम पर जाने से पहले कुछ देर के लिए गोविंदी की दुकान में छोटा मोटा जमाव जरूर होता था। कुछ लोग तो जरूर वहाँ बैठे होंगे। जब चौधरी गोविंदी के चाय घर के पास पहुँचा तो सचमुच वहाँ जमाव था, और दूर से ही हीरा की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, हमने हाथ बांधकर कहा, मालिक हम राजमिस्त्री, हम ही घर बनावें और हमारे ही रहने को ठौर नहीं, लोगों को घर जुटावें और अपना सिर छिपाने के लिए जगह ही नहीं। इस मेह बरसात में तो हमें बेघर नहीं करो। फिर हाकिम क्या बोला? किसी की आवाज़ आई। हाकिम भला लोग था, बड़े धीरज से बात सुनता रहा। बड़े अफसर तो भले लोग ही होते हैं, हरामी तो नीच वाले छोटे अफसर होते हैं, हीरा कह रहा था। तभी चौधरी ने चाय घर में कदम रखा। क्या कर आए हो हीरा, हाकिम लोग मान गए? कहते हुए चौधरी चबूतरे पर बैठ गया। चाय घर में बस्ती के साथ 8 आदमी बैठे थे। हीरा अभी भी सिर पर राजस्थानी पगड़ बांधे और कल वाले ही उजले कपड़े और काली बाशकट पहने था, जिन्हें पहनकर वह हाकिमों से मिलने गया था। चौधरी के अंदर आ जाने पर भी चाय घर में बैठे लोगों ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। बरसों से इस बस्ती के छोर पर रहने के बावजूद उसे अभी भी बाहर का छोटी जात का आदमी ही माना जाता था। चौधरी अहिर था, जबकि ये लोग राजस्थानी थे। फिर वह नौवा और ये राज मजदूर राजमिस्त्री। वह अपनी जात बिरादरी से कटा हुआ बस्ती में तीन चार ही घर अहीरों के थे, और वह भी एक दूसरे से फटे हुए, जबकि इन लोगों की पूरी पृष्ठ संख्या 9 बिरादरी थी, अपनी पंचायत थी। ये लोग आपस में गठे हुए थे। चौधरी के सवाल की तरफ विशेष ध्यान ना देते हुए हीरा मिस्त्री कहे जा रहा था। बात तो तब बिगड़ी जब बड़े साहब ने हमें छोटे अफसर के सुपुर्द कर दिया कि इनसे बात करो, यह तुम्हें सब बात समझा देंगे। बस तभी बात बिगड़ी। सच पूछो तो जब हम छोटा अफसर अंदर घुसा तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, हीरा मामला बिगड़ गया है। मालिक ने जैसे गाय की रस्सी अपने हाथों से कसाई के हाथ में दे दी हो, अंदर से ही जैसे फुरनी फुरती है, मुझे पता चल गया कि मामला बिगड़ गया है। क्यों क्यों क्या? छोटे अफसर ने हमें बोलने ही नहीं दिया, हमें अपने दफ्तर में ले गया और फैसला सुना दिया, तुम्हें निकलना होगा, बस्ती खड़ी नहीं रह सकती। पूछो राम प्रकाश से। इसने कुछ कहने को मुंह खोला कि वह अफसर कड़क कर बोला, सरकार ने जो फैसला करना था कर दिया, अब बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। सुन लो, यह भी कोई बोलने का ढंग है? अरे बोलो तो मीठा, काम तो होगा, नहीं होगा यह तो भगवान के हाथ है, पर बोलो तो मीठा। हमसे कड़वा बोलकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे भाग अच्छे थे, तुम अफसर बन गए, हमारे भाग खोटे थे, हम मिस्त्री मजूर बने। पर भाई बोलो तो मीठा, हमारा पानी तो नहीं उतारो, हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, हमारी पगड़ी तो नहीं उछालो। हमारे बाप दादा भी जमीन जायदाद वाले थे, अभी भी राजस्थान में हमारी अपनी खेती है, अब वहाँ सूखा पड़े तो हम क्या करें? बाल बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली चले आए। पर हमारे साथ बोलो तो मीठा, किसी गीत की अस्थाई पंक्ति की भांति। हीरा बार बार यही वाक्य दोहराए जा रहा था, बोलो तो मीठा भाई, हमारे साथ बोलो तो मीठा। चौधरी समझ गया कि मामला बिगड़ गया है। पिछले दिन बस्ती के तीन और लोगों को साथ लेकर हीरा सरकार से मिलने गया था। पूरा राजस्थानी बाना पहनकर तीनों जने गए थे, सिर पर पगड़, आंखों में काजल, घेरेदार अंगरखा और तेल चुपड़ी लाठी हर एक के हाथ में थी। चौधरी ने ही तीनों की हजामत भी बनाई थी और चलते समय हंसी हंसी में कहा भी था, अब पृष्ठ संख्या 10, काजल सुरमा लगाकर चले हो तो काम निपटा कर लौटना, पहले की तरह खाली हाथ नहीं लौटाना। पर उधर अफसर ने बिना बात सुने चलता कर दिया था और धमकी दी थी कि चपरासी को बुलाकर बाहर निकाल देगा। हाकिम अच्छा मिल जाए यह भी किस्मत की बात होती है। पिछली बार जब बस्ती तोड़ने की बात चली थी तो हम जिस साहिब से मिले थे वह 2 घंटे तक हमारी बात सुनता रहा और मामला आगे नहीं बढ़ने दिया था। तुम कल भी उसी अफसर से जा मिलते, उसके सामने हाथ जोड़ते, यही तो कहा, किस्मत खोटी हो तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। उसी के दफ्तर में तो गए थे, पर वह अब वहाँ नहीं बैठता, किसी दूसरे दफ्तर में काम करता है। उससे मेल मुलाकात हो जाती तो जरूर कोई रास्ता निकल आता। अब क्या कर आए हो? हम क्या करेंगे, हाथ बांध कर गए थे, हाथ बांध कर ही लौट आए। वह नहीं तो किसी दूसरे अफसर से मिलो, किसी मंत्री जी से मिलो। इस पर मूल राज बोला, हमने पहले ही कहा था, पक्के घर यहाँ नहीं बनाओ, ना तुम्हारी जमीन ना तुम्हारे नाम का पट्टा। 10-20 रोज की बात होती तो कच्ची झोपड़ियों में पड़े रहते, अब तो यहाँ रहते भी बरसों बीत गए, घर पक्का बना लिया तो क्या गुनाह किया? मूलराज लोहे की कुर्सी के ऊपर दोनों हाथ चढ़ाए बैठा था और बिगड़ी के कष ले रहा था। कल रोज घिरे बादलों के बावजूद वह एक घर में पुताई का काम करता रहा था और पुताई के छींटे अभी भी उसके हाथों और पांवों पर पड़े थे, एक आध छींटा उसके मुंह पर भी मौजूद था। तो क्या कहते हो, आज काम पर नहीं जाएं? नहीं, काम पर क्यों नहीं जाएं? यह काम इतनी जल्दी थोड़े ही निबटते हैं, हमें यहाँ से निकालेंगे भी तो महीना 2 महीना तो लग ही जाएगा, अभी कागज ऊपर जाएंगे। यह पहली बार तो बस्ती गिराने की बात नहीं हुई ना, कई बार पहले भी हो चुकी है, क्या मालूम अब की बार भी बस्ती बच जाए, हाकिम के दिलों की कौन जाने। पृष्ठ संख्या 11। उन्होंने महीने भर का नोटिस दिया था, वह तो खत्म हो गया। चौधरी ने अपनी छोटी छोटी शंकित आंखों से देखते हुए कहा। नोटिस की बात नहीं करो, वह तो आए दिन मिलते रहते हैं। खौलती चाय की केतली के पास बैठी गोविंदी बोली, तुम मर्द लोग डरते कांपते ही रहोगे। अब की बार अफसर से मिलने जाओ तो मुझे साथ ले चलना। अफसर को ऐसी फटकार सुनाऊंगी कि नानी याद करा दूंगी। तू क्या कहेगी रानी? मैं कहूंगी, जिस जमीन पर हमारी कोठरियाँ खड़ी हैं वह हमारे नाम कर दो और हमसे जमीन के पैसे ले लो। कोठरियाँ तो हमने अपने पैसों से बनाई हैं, उन्हें कोई क्यों तोड़े? हमारा नुकसान भी करे और हमें बेघर भी करे? तुम्हारे मुंह से बात ही नहीं निकलती। अंगरखे पहने कचहरी में मटक मटक कर आ गए। कहती तो ठीक हो, मूलराज ने कहा, हीरा हमें यही कहना चाहिए था। अरे कोई बात सुने तब ना, पहले यह नहीं कहा था? यही तो बरसों से कहते आ रहे हैं, कोई सुने तो। हम एक नहीं 10 तरकीबें बतावें, हम अनाड़ी तो नहीं हैं। हमारे हाथ से बीसियों घर बने हैं। आज फिर चले चलो, गोविंदी को भी ले चलो। क्यों हीरा, तुमने तो अभी अपने वस्त्र भी नहीं उतारे, चौधरी ने मस्खरी करते हुए कहा। हीरा ने हल्के से सिर हिलाया। कोई अच्छा अवसर मिल जाए तो बात बन जाए। चौधरी चुपचाप चबूतरे पर से उठकर बाहर आ गया। बस्ती क्या थी, दिल्ली की ही एक सड़क के किनारे छोटा सा राजस्थान बना हुआ था। आज़ादी के बाद दिल्ली शहर फैलने लगा था, नई नई बस्तियों की उसारी होने लगी थी और उन बस्तियों को बनाने के लिए जगह जगह से राज मजदूर खींचे आने लगे थे। दिल्ली से दूर जहाँ कहीं सूखा पड़ता या बाढ़ आती, वहीं से लोग उठ उठ कर दिल्ली की ओर भागने लगते। कहीं परिवार के परिवार चले आए, कहीं अकेले मर्द, कहीं छोटी उम्र के लौंडे लड़के भी, कहीं राजस्थान से तो कहीं हरियाणा और पंजाब के गांवों से, और कहीं तो पृष्ठ संख्या 12 दूर दक्षिण से भी। पर राज मजदूरी के काम के लिए सबसे ज़्यादा लोग राजस्थान से ही आए। रोजगार की तलाश में राज मजदूर ही नहीं, धोबी, नाई, चाय पान वाले और भी तरह तरह के धंधे करने वाले लोग दिल्ली पहुंचने लगे। कहीं नए मकानों की नींवें खोदी जाने लगती तो आसपास के राज मजदूरों की छोटी छोटी अनगिनत झोपड़ियाँ खड़ी हो जाती। लोहा, सीमेंट, ईंट, पत्थर के ढेरों के बीच इन झोपड़ियों में मोटी मोटी रोटियां सेकी जाने लगती। बच्चे रेत मिट्टी के ढेरों पर खेलने सोने लगते और मजदूरी के काम से निबट कर स्त्रियों की टोलियां गाती हुई अपनी अपनी झोपड़ियों में लौटने लगती। गारे मिट्टी की अधकचरी झोपड़ियों में भी स्निग्धता आ जाती। पर ज्यों ही पके मकानों का मुहल्ला बनकर तैयार हो जाता तो झोपड़े वहाँ से उठ जाते। राज मजदूर हट जाते, जहाँ उनकी झोपड़ियाँ थीं वहाँ सड़क की पटरियाँ बिछ जातीं, आंगनों की दीवारें खिंच जातीं और पता भी नहीं चल पाता कि कहीं वहाँ झोपड़ियों की पाते भी रही होंगी। पर जब रमेश नगर बना और बनकर तैयार भी हो गया तो राज मजदूरों के झोपड़े ज्यों के त्यों बने रहे। कारण, ये झोपड़े बस्ती से सटकर नहीं बनाए गए थे। इन्हें बस्ती से थोड़ा हटकर बड़ी सड़क के किनारे एक वीरान टीले पर बनाया गया था, जो दो तिरछी सड़कों के बीच अलग-अलग सा खड़ा था। यहाँ पर राज मजदूरों की बस्ती बस गई थी। पहले ढलान के निचले हिस्से में छिटपुट झोपड़ियाँ बनी, कोई कहीं कोई कहीं। फिर धीरे धीरे झोपड़ियों के झुरमुट उठ खड़े हुए और झोपड़ियाँ जैसे ढलान चढ़ने लगीं। धीरे धीरे झोपड़ियों की कतारों के बीच गलियाँ बन गईं। राज मजदूर अपने भाई बंदों को भी बुलाने लगे, दिल्ली में चले आओ, शहर बड़ा है, रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, तुम चले आओ। और काम की सचमुच कमी नहीं थी। रमेश नगर बनकर खड़ा हो गया तो उसी की बगल में दक्षिणी रमेश नगर बनने लगा, और वह भी बन चुका तो पश्चिमी रमेश नगर की बारी आ गई। ये तीनों बन चुके तो इसके पीछे पांडव नगर बनने लगा। बस्तियां एक पर एक बनती ही जाती, शहर फैलता ही जाता। फिर यही झोपड़े पक्के होने लगे। आखिर राज मजदूर ही तो यहाँ रहते थे, उनके लिए कच्ची दीवार की जगह पक्की दीवार खड़ी करना और मिट्टी के फर्श की जगह ईंटों की फर्श बांधना क्या मुश्किल था। इस तरह पृष्ठ संख्या 13, राज मजदूर अपनी छोटी सी बस्ती में बने रहे। उनकी औरतें मजदूरी छोड़ रमेश नगर के घरों में ही चौका बर्तन करने लगीं। उनके मर्द और भाई बंद बसों में बैठकर जगह जगह इमरती काम पर जाने लगे और इस तरह दिल्ली के ही वाशिंदे बनकर रह गए। इनकी अपनी छोटी सी नगरी बस गई। कभी शाम सवेरे किसी वक्त इस नगरी में जाओ तो लगता जैसे राजस्थान के ही किसी कस्बे में पहुंच गए हो। रंग बिरंगे घाघरे, पाँव में छनकती पाजेब, चारों ओर राजस्थानी रंग छिटके रहते। झोपड़ी की दीवारों पर राजस्थानी चलन के ही अनुसार कहीं मोर तो कहीं हाथी के, कहीं सरपट दौड़ते चेतक घोड़े के चित्र बने रहते। यहीं पर शादियां ब्याह होने लगे। यहीं पर राज मजदूरों ने अपनी पंचायतें बना ली। जहां गलियां कच्ची थी, वहां धीरे धीरे चौके बिछ गए, पक्की गलियां बन गई। पानी का बड़ा पाइप उधर से ही होकर जाता था, इसलिए कह सुनकर तीन जगह पर नल भी लग गए। चाय पानी की सौदा सूत की छोटी मोटी दुकानें भी खुल गईं। गोविंदी का पति जब किसी छत पर काम करते गिरकर मर गया तो पंचायत वालों ने ही उसे चाय की दुकान खोल दी। पक्की कोठरियों के साथ साथ एक दूसरे को बांधने वाले सूत्र और तंतु भी पक्के होने लगे। दो दो पीढ़ियां बस्ती में उम्र लांघने लगीं। ऐसे छोकरे छोकरियां जिन्होंने राजस्थान की धरती को कभी देखा नहीं था, बस्ती और बस्ती के बाहर रमेश नगर की सड़कों पर घूमती दौड़ती फिरती। लड़कियां बिंदी लिपस्टिक लगाती, फोटो खिंचवाती और शहर में टेलीविजन आ जाने पर शाम को किसी न किसी घर की खिड़की में झांक झांक कर टेलीविजन देखती। उनकी बस्ती में रेडियो और ट्रांजिस्टरों पर फिल्मी गाने गूंजते। नई पौध को दिल्ली की हवा लगने लगी थी। कोई फिल्म ना थी जिसे ये नहीं देखते, कोई फिल्मी गीत नहीं था जिसे ये नहीं गुनगुनाते। कहीं कहीं पर तो नए नए गुल भी खिलने लगे थे। साहू की बेटी राधा, दो बच्चों की माँ बाहर किसी बस कंडक्टर के साथ भाग गई। लौंडे लपाड़ों को शराब जुआ और आवारागर्दी की लत पड़ने लगी। गोविंदी की चाय की दुकान पर बस्ती के बड़े बूढ़े बैठते तो यही चर्चा रहती कि कैसे लौंडे लौंडियों को खींच तान कर रखा जाए। राजस्थानियों की ही इस बस्ती में सड़क के पास हरियाणा और उत्तर प्रदेश पृष्ठ संख्या 14 के कुछ नाई मोची धोबी आदि भी आकर बस गए थे। जात पात अलग होने के कारण इनके साथ शादी ब्याह के रिश्ते तो नहीं थे, लेकिन उठना बैठना दोस्ती मुरव्वती थोड़ी बहुत जरूर चलने लगी थी। चौधरी नाई का झोपड़ा पहले ढलान के नीचे हुआ करता था, फिर एक बुढ़िया के मरने पर वह बस्ती के बीचों बीच उस बुढ़िया के झोपड़े में आ गया था कामकाज के लिए। यह इसी बस्ती के बाहर सड़क किनारे अपनी नाई की कुर्सी लगाता था। इस तरह बरसों तक यही रहने के कारण वह बहुत कुछ बस्ती के ही जीवन का अंग बन चुका था। चाय की दुकान में से निकलकर चौधरी ने कदम बढ़ा दिए और तेज तेज चलता हुआ ढलान उतरने लगा। अभी कुछ कर लो तो कर लो, पीछे कुछ नहीं होगा, वह बुदबुदाया और लंबे लंबे डग भरने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखों में उत्तेजना आ गई थी। ऊंचे लंबे कद का सांवला सा आदमी नीली कमीज में कंधे झुकाए चलता हुआ भालू सा लग रहा था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी, अब बारिश की फुहार सी पड़ने लगी थी। लगता धुंध में से ही फुहार के कण बन बन कर मुंह पर लगने लगे हैं। हल्के हल्के कण नुकीले कांटों की तरह मुंह और हाथों को चुभ रहे थे। धुंध छटने लगी थी, ठंडी हवा के हल्के हल्के झोंकों से जैसे छन छन कर बिखर रही थी। बस्ती की गलियों में चहल पहल पड़ गई थी। वातावरण साफ होने लगा था। गलियों में फिर से रंगीनी छिटकने लगी थी। मर्द लोग काम पर देर से जाते थे। औरतें जगह जगह चौका बर्तन करने के लिए पहले से निकल जाती थीं। कोठरियों के बाहर जगह जगह चूल्हे जलने लगे थे और काम पर जाने वाले मर्दों के लिए रोटियां सेकी जाने लगी थीं। अपनी कोठरी के पास से गुजरते हुए चौधरी ने देखा कि उसकी अधेड़ उम्र की पत्नी रोज की तरह मैली कुचैली बनी कोठरी के बाहर आग जलाने के लिए चूल्हे में फूके मार रही है। अपने पति को पास से गुजरते देख अपना पोपला मुंह फुला कर बोली, देर कर दी, आज काम पर नहीं जाओगे? चौधरी ने चलते चलते ही जवाब दिया, इस मौसम में तेरा बाप हजामत बनवाने आएगा? पृष्ठ संख्या 15। ऊपर देखती नहीं कैसी घटा छाई है? चाय तो पी जाओ, बनाऊं? उसकी पत्नी ने कहा, जिस पर चौधरी ने चिल्ला कर कहा, बसंती को जगा दे। सुनती है? मैंने क्या कहा? बसंती को जगा दे, मुंह हाथ धुला दे, मैं अभी आ रहा हूं। चौधरी सीधा चलता हुआ ढलान के नीचे लंगड़े दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा। लंगड़ा दर्जी बुलाकी राम अपनी दुकान खोले। दुकान के ही बाहर एक हाथ कमर पर रखे उचक उचक कर झाड़ू लगा रहा था। दुकान के चबूतरे के ऊपर ऊंची अलगनी पर स्त्रियों के सिले कपड़े, घाघरे, अंगिया, बच्चों के कुर्ते पाजामे, टोपियाँ आदि लटक रहे थे। बुलाकी राम काम शुरू कर दिया तड़के तड़के? आओ चौधरी आओ, बुलाकी ने कमर सीधी करते हुए कहा, आओ बैठो, आज सुबह सवेरे दर्शन दिए। और बड़ी फुर्ती से चबूतरे पर से पीढ़ा उठाकर चौधरी के सामने रख दिया। हमारी अमानत कब मिलेगी? बुलाकी छूटते ही बोला, तेरी अमानत धरी है जब ले ले, भले ही आज ही ले ले। चौधरी ने अपनी छोटी छोटी आँखें बुलाकी के चेहरे पर गड़ाते हुए जवाब दिया। इस पर लंगड़े बुलाकी का सारा शरीर पुलक उठा और एक अजीब सी अस्फुट आवाज़ उसके कंठ से निकली, पहले वाली बात तो नहीं होगी ना चौधरी? हम बारात सजा कर ले गए और तेरी लौंडिया ने जहर फांक लिया। अब की बारात का लफड़ा ही नहीं करेंगे, चुपचाप काम निपटा देंगे। तू अपना घर पक्का कर चौधरी, हम तो अपनी लक्ष्मी के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं। और बुलाकी के कंठ से फिर वही विचित्र सी आवाज़ निकली, 1200 होंगे, चाहे तो आज ही ब्याह कर ले। दर्जी के चेहरे की ओर इकटक देखते हुए चौधरी ने स्थिर निश्चेष्ट आवाज में कहा, हैं क्यों भला? 800 पर बात पक्की कर चुका है, 600 पेशगी ले भी चुका है, अब 1200 कह रहा है, अपनी जवान से मुकर रहा है, यह बात अच्छी नहीं चौधरी। आदमी को जवान का पक्का होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 16। 1200 होंगे, कहेगा तो आज ही उसके हाथ पीले कर दूंगा। 400 पेशगी अभी दे दे, पूरे 1000 हो जाएंगे। 200 लुगाई घर आ जाने पर दे देना। 1200 क्यों? किस बात के 1200? 800 पर तैने जवान की थी, जवान दे चुका हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। 14 बरस की भी नहीं है छोरी, अब 14वें में पैर रखा है और तेरे जैसे के हाथ में दे रहा हूँ, नहीं तो 10 आदमी रोज इसके लिए पूछते हैं। अब मंजूर हो तो बोल दे, आज ही लुगाई घर आ जाएगी। लंगड़े बुलाकी ने फिर से पुलकते हुए कहा और उसके बदन ने टेढ़ी सी अंगड़ाई ली और उसमें उत्तेजना की हिलोर सी दौड़ गई। आ जाएगी, कहेगा तो घंटे भर में आ जाएगी, पक्का? और बुलाकी के कंठ में से फिर से विचित्र सी आवाज़ निकली, हाँ मैं कह जो रहा हूँ, तैने पहले भी 2 बार कहा था। मेरी जुबान पर तुझे विश्वास नहीं है? और नहीं तो तेरे साथ धोखा करूँगा बुलाकी, हम खेल बड़े हुए हैं, कभी इतने दिनों मैंने तेरी बात मोड़ी है? अब देर नहीं कर, ला पैसे और ब्याह शादी का प्रबंध कर। कौन से पैसे? तुम्हें 600 दे चो चुका हूँ, 400 और निकाल, पूरे 1000 हो जाएंगे, बाकी 200 रसम के बाद में दे देना। बुलाकी अपनी आड़ी तिरछी आंखों से चौधरी की ओर देखता रहा। संशय और अविश्वास के बावजूद उसके मुंह से लार बहने लगी थी। दो बार पहले भी चौधरी उसे झांसा दे चुका था। एक बार तो बारात उसके घर के बाहर तक जा पहुंची थी और चौधरी ने यह कहकर टाल दिया था कि बसंती ने चूहे मारने वाली गोलियां खा ली हैं और कोठरी के अंदर औंधी पड़ी है। दूसरी बार सब तैयारी पक्की हुई तो बोल दिया कि लड़की अपनी बहन के पास गांव गई है, जब लौटेगी तो ब्याह कर दूंगा, और 200 और ऐंठ ले गया था। इसके बाद आज लौटेगी कब लौटेगी। पृष्ठ संख्या 17। बुलाकी ने चुपचाप सिलाई के कपड़ों के नीचे से एक संदूकची निकाली और पूरे 200 रुपये निकाल कर चौधरी की ओर बढ़ाते हुए बोला, हमने तेरी बात पर फूल चढ़ाए चौधरी, आगे तू जान, तेरा ईमान जाने, यह ले पूरे 200 हैं। 200 क्यों? इस वक्त पास में इतने ही हैं, बाकी लक्ष्मी घर आ जाने पर पूरे कर दूंगा। अब बता कितने बाराती लाऊं, और पंडित का इंतजाम तू करेगा या हम अपने साथ लाएंगे? 200 और निकाल, फिर बात करूंगा, और नहीं होते तो तुझसे इनकारी थी, कहा जो दिया। और बुलाकी ने चौधरी की ठुड्डी पर हाथ लगाया, बार बार बोला, बस इतने ही हैं आज, शाम तक बाकी पैसों का इंतजाम कर दूंगा। पर अंत में फिर संदूकची खोली, गिनकर 50 रुपये निकाले और चौधरी की ओर बढ़ा दिए। भगवान कसम, वसंती रानी के लिए रखे हुए थे। घर में लक्ष्मी आएगी तो उसे कुछ नहीं दूंगा, उसी के लिए रखे थे, पर तू लिए जा रहा है। चौधरी ने जेब में पैसे ठूंसे और चलने के हुआ। अब तू देरी नहीं कर, पंडित लेकर अभी चल आ हमारी कोठरी में, आज कारज करवा देता हूँ। लंगड़ा उचक कर दुकान के चबूतरे पर चढ़ गया। बसंती रानी के लिए 2 जोड़ मैंने अपने हाथ से बना रखे हैं, एक जोड़ा अपने साथ ले जा, उसे पहना दे, वही जोड़ा पहनकर घर आवेगी, कहते हुए बुलाकी दुकान के अंदर गया और शीघ्र ही पीले रंग का घाघरा और गहरे लाल रंग की ओढ़नी, जिस पर सफ़ेद रंग की झिलमिलाती बिंदियाँ लगी थीं और हरे रंग की अंगिया उठा लाया और उन्हें हाथों से सहलाता हुआ चौधरी के हाथ में देकर बोला, ले जा, अब ढील नहीं कर, मैं पंडित को लेकर तेरे घर पहुँचा कि पहुँचा। जब कपड़ों का जोड़ा बगल में दबाए चौधरी अपनी कोठरी के बाहर पहुँचा तो उसकी पत्नी अभी भी बाहर बैठी गीली लकड़ियों में फूंके मार रही थी और अंदर खाट पर वसंती गहरी नींद सो रही थी। जाग गई वसंती, ले उसे यह जोड़ा पहना दे, दूल्हा अभी आ रहा है, आज ही लड़की के हाथ पीले कर देंगे, मैं बात कर आया हूँ। पृष्ठ संख्या 18। इस बादल मेह में ब्याह करोगे आज ही? क्या पक पक कर रही है? कहा जो रहा हूँ, बात कर आया हूँ, बादल में क्या ब्याह नहीं होते? पर जब अंदर कदम रखने पर उसने पाया कि बसंती गहरी नींद सोई पड़ी है और उसका एक हाथ पास में सोए उसके छोटे भाई की गर्दन पर पड़ा है, तो चौधरी का पारा चढ़ गया। बसंती की पीठ पर जोर से घूंसा, जमाते हुए बोला, हराम जादी, अभी तक सो रही है, उठ जा। और चौधरी ने उससे चुटिया से पकड़कर खाट पर सीधा बैठा दिया। बसंती हड़बड़ाकर उठी, आंखें तो उसकी फौरन खुल गईं, लेकिन चेतना लौटने में देर लगी। अंधेरी कोठरी में उसे अपने भीमकाय बाप का चेहरा नजर आया। पास में उसकी माँ खड़ी थी और चिल्लाए जा रही थी, कल मुही दिन भर सोई रहेगी, देखती नहीं मैं काम कर रही हूँ या लंबी तान कर सो रही है, उठ जा, नल पर जाकर मुंह हाथ धो। अधमुंदी आंखों में बसंती उसकी ओर देख रही थी और कहीं अवचेतन में सोच रही थी कि अब माँ का भी हाथ उठेगा या नहीं। माँ पिटने से पहले चिल्लाती है, जबकि बाप मारते वक्त चुप रहता है, इसीलिए उससे डर भी ज़्यादा लगता है। माँ पिटती है तो ताबड़तोड़ पीठ पर मारती ही जाती है, जब तक बसंती उसके हाथ से निकलकर भाग न जाए, जबकि बाप एक वक्त में एक ही घूंसा मारता है, पर उसके एक ही घूंसे से जान निकल जाती है। तभी बसंती की नज़र माँ के हाथ में रंग बिरंगे कपड़ों पर पड़ी और उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। जा, नल से मुंह हाथ धोकर आ, माँ चिल्लाई, और दूसरे क्षण बसंती खाट पर से कूद कर उतरी कोठरी के बाहर निकल गई। चौधरी कोठरी के बाहर आ गया, तभी एक अजीब सी घरघराहट की सी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई चौधरी के कान में पड़ी। आवाज़ बस्ती के बाहर से आ रही पर अस्पष्ट सी, जैसे धुंध और बादलों में लिपटी हुई, पर चौधरी के कान खड़े हो गए। वह ध्यान से उसे सुनने लगा। बगल वाली कोठरी के बाहर रामू की घरवाली खड़ी थी। यह क्या आवाज़ है, तैने सुनी? पृष्ठ संख्या 19। नहीं जी, मैंने तो नहीं सुनी। चौधरी ने ढलान के ऊपर नीचे जाते लोगों की ओर देखा। किसी का ध्यान उस आवाज़ की ओर नहीं गया था। सामने वाली कोठरी के बाहर विशेषर की अंधी बूढ़ी माँ बैठी थी। चौधरी ने उससे भी पूछा, मैया तेरे कोई आवाज़ सुनी? जवाब में बुढ़िया बुदबुदाई, हाँ सुनी तो है, बाएं से आ रही है। कैसी आवाज़ है रे? चौधरी के मन का संशय पक्का होने लगा और वह कान लगाकर आवाज़ को सुनने लगा। नल की ओर ढलान चढ़ते हुए बस्ती जैसे खिल उठी। दिन चढ़ आया था और गली में चहल पहल थी। एक कोठरी के बाहर उसकी सहेली शामू अपने छोटे भाई को गुड़ की टुकड़ी तोड़कर दे रही थी। बसंती पर नज़र पड़ते ही बोली, कल हमने तस्वीर खिंचवाई बसंती, आ दिखाऊं, देखेगी? बसंती कोठरी की ओर मुड़ गई। कहाँ से खिंचवाई? इधर आ, दिखाती हूँ। और शामू कोठरी के अंदर से एक लिफाफा उठा लाई। तस्वीर में शामू और जमुना दोनों सहेलियाँ एक दूसरी के कंधे पर हाथ रखे सामने की ओर मुस्कुराती हुई देख रही थी। देख, काजल भी नज़र आ रहा है, शामू कह रही थी। देखा, हम दोनों काजल लगाकर गई थी ना, पर फोटो वाले ने पहले ही बता दिया, सुर्खी लगाओगी तो फोटो में नहीं आएगी। सुर्खी भी लगाई थी? हाँ, तो हम दोनों ने सुर्खी भी लगाई, लिपस्टिक भी लगाई। जमुना ने हरे रंग का घाघरा पहना, मैंने लाल रंग का, पर दोनों एक से आए, फोटो वाले ने पहले ही कह दिया था। फोटो लौटाते हुए बसंती ने झट से कहा, आज तो मैं टेलीविज़न पर पिक्चर देखूंगी, शाम को पिक्चर दिखाएंगे। बसंती ने इस लहजे से कहा मानो शामू का फोटो खिंचवा लेना कोई बहुत, पृष्ठ संख्या 20, बड़ी बात नहीं थी जिसका उस पर गौरव पड़ सके। कौन सी पिक्चर, तू कहाँ देखेगी? देवकी बीवी के घर, वहाँ और कोई नहीं देख सकता, बसंती ने रौब काटते हुए कहा। इस पर शामू क्यों कर खम खा जाती, छूटते ही बोली, मैंने पाजेब बनवाए हैं, दिखाऊं? देखेगी, 10 रुपए लगे हैं। शामू अंदर से पाजेब लाने जा ही रही थी जब बसंती को बाप का झापड़ याद आया और वह उन्हीं कदमों नल की ओर भाग गई। चौधरी अभी भी कोठरी के बाहर खड़ा था। उसने देखा कि अब जगह जगह कुछ लोग अपनी अपनी कोठरियों के बाहर खड़े नीचे की ओर उसी दिशा में देख रहे हैं जहाँ से घरघराती सी आवाज़ आई थी और जो अब पहले से ज़्यादा गहरी हो गई थी। लगता है सभी को एक सा संदेह होने लगा है, लेकिन जैसे वह सकते में आ गए हैं और उसे चुपचाप सुने जा रहे हैं। चौधरी ने ढलान के ऊपर की ओर देखा। गोविंदी अपनी दुकान के चबूतरे पर खड़ी उसी ओर कान लगाए सुन रही थी। तभी नीचे से एक आदमी दौड़ता हुआ ढलान चढ़ता नजर आया। मैंने कहा था ना कोई बात है, ऊपर से गोविंदी की आवाज़ आई। अब तक बहुत से लोग कोठरियों से बाहर निकल आए थे। कुछ जैसे मंत्र के प्रभाव को तोड़कर ढलान के नीचे उतरने लगे थे। क्या है रे मनवा, चौधरी ने भागते हुए लौंडे से कहा। पुलिस आई है, सड़क पर लारियां ही लारियां हैं, वे घर गिराएंगे। और वह हांफता हुआ ढलान चढ़ने लगा। तू किधर जा रहा है? मैं हीरा के पास जा रहा हूँ। मनवा की छाती खुली थी और वह बुरी तरह से हांफ रहा था। गले में काले धागे से बंधी सौभाग्य की कंठी दाएं बाएं झूल रही थी। जो लोग पहले ढलान के दोनों ओर चुपचाप खड़े थे, वह घबरा कर इधर उधर जाने लगे। ढलान के नीचे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ अपने आप हिलने लगे। पृष्ठ संख्या 21। तभी दूर नीचे सामने पड़ने वाली कोठरियों के पीछे से धूल का बवंडर सा उठा और खड्ड सी गहरी धीमी सी आवाज आई, जैसे कुएं में बड़ा सा पत्थर फेंकने पर आती है। और ढलान के नीचे भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी कोठरियों की ओर भागे। देखते ही देखते औरतें और मर्द अपनी अपनी कोठरियों में से तरह तरह का सामान निकाल निकाल कर बाहर रखने लगे। कनस्तर और घड़े और गठरियां और डिब्बे। पलक मारते सारा दृश्य बदल गया। नीचे खड़े लोगों की गांठें खुल गईं और लोग छितरा गए। हर तरफ भागते हुए नजर आने लगे। हीरालाल, मूलराज और शंभू गोविंदी की दुकान पर से उठ आए थे और ढलान के नीचे सिरे पर भौचक्के से खड़े थे। पास में मनवा खड़ा हाँप रहा था। तीनों अभी भी सिर पर पगड़ बांधे थे और अंगरखे पहने हुए थे, जिन्हें पहनकर वह पिछले दिन हाकिमों से मिलने गए थे। हीरालाल का चेहरा भी पीला पड़ गया था और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाए जा रहा था। हीरालाल ने सिर पर से पगड़ उतारा और उसे बगल में दबाकर नंगे सिर चुपचाप दुकान के पीछे अपनी कोठरी की ओर चला गया। बाकी दोनों ने भी सिर पर से पगड़ उतार दिए और तेजी से अपनी अपनी कोठरियों की ओर लपके। गोविंदी ने पानी की बाल्टी उठाई और चूल्हे पर पानी फेंक कर आग बुझा दी। लोगों की भीड़ में से एक और स्त्री हाँफती हुई ढलान चढ़ रही थी। क्या है री गंगो, नीचे क्या हो रहा है? घर तोड़ रहे हैं, नीचे पुलिस की लारियां ही लारियां हैं। मैं चौकावर्तन करने बाबू के घर गई थी, वहीं पता चला तो भागी आई। उठा लो जो उठा सकती हो, नहीं तो एक एक चीज तोड़ डालेंगे। कोठरियों के बाहर गठरियां, कनस्तरों, ट्रंकियों के ढेर लगने लगे थे। कुछ लोग सिरों पर गट्ठर और कनस्तर उठाए हड़बड़ी में गिरते पड़ते ढलान उतरने लगे। शोर बढ़ता जा रहा था। इन्हें कहाँ ले जाऊं, इन्हें मेरा कौन उठाएगा? गोविंदी की आवाज थी। पहले तो वह अपनी दुकान का सामान, प्लेटें, प्याले, गिलास, कड़ाहियाँ ला लाकर चबूतरे पर रखती रही थी और अब हताश ही होकर वहीं बैठ गई और ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। पृष्ठ संख्या 22। चौधरी, जो अभी तक किम कर्तव्य विमूढ़ सा सारा दृश्य देखता रहा था, सहसा ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, बसंती, बसंती। ढलान से लोग अपने गट्ठर और कनस्तर और कहीं कहीं खाटें उठाए गिरते पड़ते उतर रहे थे। अभी भी कुछ लोग, विशेषकर स्त्रियां, कोठरियों के बाहर गाढ़े की मोटी चादरों में मुंह से लपेटे ढलान की ओर ताके जा रही थीं। उन्हें अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच उन्हें अपनी कोठरियां छोड़ देनी होंगी। नीचे ढलान के सिरे पर से अब बार बार धूल के बवंडर उठ रहे थे और ढलान पर भीड़ ही भीड़ थी। किसी किसी वक्त इस धूल के बीच किसी आदमी की अस्पष्ट सी आकृति नजर आती, जो किसी कोठरी की छत पर खड़ा बार बार छत पर गेंती मार रहा था। कभी कोई एक आकृति नजर आती, कभी क्षण भर के लिए एक से अधिक आकृतियां नजर आती और फिर नीचे से उठती धूल में खो जाती। किसी किसी वक्त लोगों की चीख पुकार थम सी जाती और तब धूल के बवंडरों के बीच से ढक 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 का सा शब्द सुनाई पड़ता। धूल का एक बवंडर उठने पर फिर क्रंदन सा उठता और थोड़ी देर के लिए अटपटा मौन सा छा जाता और इसी मौन के बीच अस्पष्ट सी ढक ढक की आवाज सुनाई पड़ने लगती। बसंती अभी नल पर पहुंची ही थी कि यह तमाशा शुरू हो गया था। पहले तो वह गोविंदी के ही चबूतरे के पास नल के निकट खड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखती रही। फिर उसने समझा कि आकर्षण का मुख्य केंद्र वह स्थान है जहां से धूल उड़ रही है, और वह उसी क्षण हिरनी की तरह भागती हुई ढलान उतरने लगी। चौधरी की कोठरी के बाहर भी अब ढेर सा सामान रखा था और बसंती की माँ जोरों से रोए जा रही थी और रोती हुई ही कोठरी कोठरी के अंदर से छोटे छोटे डिब्बे उठा उठा कर बाहर ला रही थी। सदा की भांति उसके उलझे हुए बालों की लटें उसके मुंह पर गिर रही थी और छाती के बटन खुले थे और चिकट मैली धोती जगह जगह से फट रही थी। अपने पोपले मुंह से बुदबुदाती हुई रोती बिलखती वह घर का सामान बाहर निकाल रही थी। चौधरी ने एक बार फिर बसंती को पुकारा और फिर पत्नी के सिर पर घर का सामान रखने लगा। एक टंकी और टंकी के ऊपर आटे का कनस्तर और पृष्ठ संख्या 23, उसके ऊपर बाल काटने वाले औजारों का थैला और उसके ऊपर पीतल की परात और लोटा। चौधरी उस पर सामान लादे जा रहा था और वह नीचे खड़ी खड़ी रोए जा रही थी। औजारों का थैला रखते ही उसके घुटने बैठ गए। मार डालोगे मुझे? मुझसे नहीं उठेगा। तू नहीं उठाएगी तो यहाँ तेरा बाप सारा सामान उठाने आएगा? चौधरी को बहुत सा सामान छोड़ना पड़ रहा था। बसंती पास में होती तो कुछ सामान वह उठा लेती, परंतु न जाने हरामजादी कहाँ जाकर मर गई। बसंती का छोटा भाई रामू अभी भी कोठरी के अंदर खाट पर मीठी नींद सो रहा था। वह माँ बाप का लाडला था, उसे तभी उठाया जाएगा जब सब सामान उठ जाएगा। चौधरी ने अपनी खाटे यहीं छोड़ दी, हजामत बनाने की कुर्सी भी यहीं छोड़ दी। कोठरी के बाहर अभी भी पटरा मसाला पीसने की सील और 5-6 डिब्बे रखे थे, इन्हें भी वह छोड़े जा रहा था। सामान लादने के बाद चौधरी अंदर गया और एक फतुही अपने बेटे के इर्द गिर्द लपेट कर उसे उठा लिया और सोए बेटे का सिर अपने कंधे से सटाकर ढलान उतरने लगा। तभी सहसा जोरों की बारिश होने लगी, पानी बरसने लगा। क्या मालूम घर तोड़ना बंद कर दें। चौधरी ने ढलान उतरते हुए एक आदमी को संबोधित करते हुए कहा, जो जैसे तैसे दो ट्रंक सिर पर रखे बगल में गठरी उठाए बच बच कर पांव रखता हुआ नीचे उतर रहा था। उसने कनखियों से चौधरी की ओर देखा। अब निकल आए तो निकल आए चौधरी, आज क्या और कल क्या, अब ये तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तेज बारिश उतरने की देर थी कि पल भर में ढलान पर कीच ही कीच हो गया। ढालवा गली में पक्की ईंटें भी बिछी थी और जगह जगह पर चौके भी थे, लेकिन ईंटों चौकों के रहते हुए भी गीली मिट्टी की परत उस पर बिछ गई थी। लोगों के पैर पड़ने से फिसलन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी बसंती की माँ का पांव फिसला और वह धड़ाम से कूल्हे के बल जा गिरी। आटे का कनस्तर खुल गया और आधा आटा कीच के ऊपर छितर गया। देखते ही देखते पीछे से आने वाले लोगों के पांव आटे पर पड़े, जिससे वह पहले बदरंग और फिर कीच के ही रंग में बदल गया। माँ की किस्मत अच्छी थी जो कनस्तर पीछे की ओर गिरा और ट्रंकी टेढ़ी होकर बाईं ओर गिरी। नहीं तो पृष्ठ संख्या 24, उसका माथा फूट कर लहूलुहान हो जाता। बसंती की माँ रोती बिलखती कमर पर हाथ रखे उठी और अपना सामान बटोरने लगी। बसंती का भाई रामू अभी भी फतुही में लिपटा चौधरी के कंधे से लगकर सो रहा था और चौधरी ने एक हाथ में बाल्टी उठा रखी थी। अगर चौधरी ने रामू को कंधे पर से नीचे उतार दिया होता तो कुछ सामान रामू भी उठा सकता था और कुछ और सामान स्वयं चौधरी, पर चौधरी को यह मंजूर नहीं था। ढलान अब लोगों से खचाखच भरी थी। सभी लोग मर्द और औरतें अपने अपने टीन कनस्तर उठाए मूसलाधार बारिश में एक दूसरे से टकराते उलझते नीचे उतर रहे थे। अब ऊपर की ओर भी शोर बहुत बढ़ गया था। कोठरियों के बाहर बहुत सा सामान रखा रह गया था और अब ढलान पर भी लोगों का सामान छूटने लगा था। कहीं पर कोई खाट गिर पड़ी थी तो कहीं पर कोई घड़ा या छोटे छोटे डिब्बे एक बार हाथ से छूट जाने पर भीड़ में उसे दोबारा उठा पाना असंभव था। डिब्बा एक बार गिरकर खुल गया तो उसे समेटने उठाने का सवाल ही नहीं उठता था। श्यामू की माँ गंगो चाची गोद में बच्चे को उठाए सिर पर टंकी रखे ढलान पर से उतर रही थी जब पीछे से लोगों को धक्का पड़ा और गंगो चाची औंधे मुंह गिरते गिरते बची और टंकी नीचे गिरते ही खुल गई और सभी कपड़े लत्ते लोगों के कीच भरे जूतों के निचले मसले जाने लगे। गंगो चाची बड़ी कठिनाई से अपने बच्चे को संभाल पाई थी। बच्चे को छाती से लगाए वह चिल्लाए जा रही थी और खुली ट्रंक में से उसके कपड़े लोगों के कीच भरे पांवों से खींच खींच कर बाहर कीच में रौंदे जा रहे थे। लाल रंग की चुनरी को देखते ही देखते कीच से लथपथ गोल गेंद की तरह नीचे लुढ़कती जा रही थी। चाची गंगो बच्चे को छाती से चिपकाए एक बार ट्रंकी को उठा पाने के लिए लपकी पर पीछे से एक और रेला आया और गंगो चाची को ही धकेल कर नीचे ले गया। बसंती तेज तेज भागती हुई ढलान पर से उतरते लोगों से बचती उस जगह जा पहुंची जहां पर सब कोठरियां तोड़ी जा रही थी और अपनी चकित उत्सुक आंखों से आसपास का दृश्य देखने लगी। तीन चार सिपाही सिर पर लोहे के टोपे पहने जिनसे रस्सियों की बनी जालियां लटक रही थी रास्ता रोके खड़े थे और लोहे की मूठ वाली लाठियां उठाए हुए थे और ढलान के आसपास की गलियों में से आने वाले लोगों को बाएं हाथ की गली में धकेल रहे थे। पृष्ठ संख्या 25। कुछ पुलिस वालों के कंधों से लकड़ी के जालीदार चौखटे से लटक रहे थे। उनकी वर्दियां पानी से तर हो रही थी और पानी उनकी टोपियों पर से भी चू रहा था। सिपाहियों की पांत के पीछे जगह जगह ऊंचे ऊंचे बांस और बल्ले और लठ नजर आ रहे थे और कीच और मलबे का ढेर भी। बसंती के लिए पहचानना कठिन हो रहा था कि कौन सी कोठरी किसकी थी। ऐन सामने वाली कोठरी के बाहर जमीन पर तीन चार डिब्बे लुढ़के हुए थे। एक डिब्बे में से थोड़े से चावल निकल कर कीच पर छितरे हुए थे। कोठरी की दीवार टूटी पड़ी थी पर दरवाजा अभी भी टेढ़ा होकर झूल रहा था। कोठरी के बाहर चूल्हा भी टूटा पड़ा था। बसंती ने आंख उठाकर देखा, दाएं हाथ एक कोठरी की दीवार पर दो सिपाही खड़े थे और छैनियों से छत को तोड़ रहे थे। एक और सिपाही नीचे से कोठरी के बाहर पहुंचा था। उसने छैनी उठाकर सबसे पहले चूल्हे को तोड़ा और फिर कोठरी की दीवार पर छैनी मारने लगा। दीवार पर नीले रंग से दो सुंदर बड़े बड़े मोर बने हुए थे। यह विष्णु की कोठरी थी। उसी की कोठरी की दीवार पर नाचते मोर बने थे, नहीं तो और लोगों की दीवार पर कहीं घोड़ा तो कहीं हाथी के चित्र थे। यह तो विष्णु की कोठरी है, इसे तोड़ क्यों रहे हो? सहसा बसंती के मुंह से निकल गया। दूसरे क्षण सामने वाला सिपाही उसकी ओर घूम गया। दांतों की एक बत्ती सी उसके सामने खुली और दो आंखें बसंती को भौंकती हुई सी घूरने लगी। भाग यहां से हराम जादी, नहीं तो बताता हूं तुम्हें क्यों तोड़ रहे हैं। बसंती घबरा कर पीछे हट गई। विष्णु की कोठरी के साथ वाली कोठरी भी अब तोड़ी जाने लगी थी। पुलिस के सिपाही और ऊपर की ओर सरक आए थे, लेकिन सहसा उस कोठरी के सामने बस्ती के कुछ लोग खड़े हो गए थे। बसंती की बगल में खड़ी एक औरत हाथ पसार पसार कर चिल्लाए जा रही थी, ओ मेहरू दाढ़ी जार, तू भी यह काम करने लगा है? कोठरी की दीवार पर उलझे सूखे बालों वाला एक आदमी जो धारीदार पृष्ठ संख्या 26 पाजामा पहने था, फावड़ा हाथ में लिए कोठरी की छत तोड़ रहा था। अपनी ही बस्ती के घर तोड़ रहा है हरामजादे, सारी शरम बेच खाई है, तुझे कोड़ पड़े। अब अपनी कहाँ है, अब सरकार की है। इस पर भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, तैने भी तो अपनी कोठरी बनाई थी। बनाई थी तो बनाई थी, ऊपर से जवाब आया, सरकार तो इन्हें तोड़ेगी ही, अब अपनी मंजूरी क्यों छोड़ें? हम नहीं तोड़ेंगे तो कोई दूसरा आकर तोड़ेगा। सारी शर्म हया बेज खाई है मेहरू, अपने ही लोगों के घर तोड़ रहा है। सरकार तोड़ रही है, मैं कहाँ तोड़ रहा हूँ? मैं नहीं तोड़ूंगा तो क्या बस्ती नहीं टूटेगी? जा मर दाढ़ी जार, शरीर में कीड़े पड़ेंगे, तिल तिल कर मरेगा। भीड़ में खड़ी अनेक स्त्रियां हाथ पसार पसार कर उसे गालियां दे रही थीं और बार बार उसके सामने थूक रही थीं। तभी एक पुलिस वाला चलता हुआ आया और एक औरत को धक्का देकर बोला, चुप करेगी या हथकड़ी लगा दूं, निकल यहाँ से। और गिरती पड़ती पीछे हट गई। औरत गिरती पड़ती पीछे हट गई। दाढ़ी जात, तुझे मौत खाए, मैं तेरी माँ बराबर, मुझे धक्का दे रहा है, डॉट डॉट। पुलिस के बड़े अधिकारी जानते थे कि इतनी बड़ी बस्ती एक दिन में नहीं गिराई जा सकती, पर जितनी हो सके शुरू से 30-40 घरों को तोड़ डालना जरूरी था, ताकि बस्ती रहने के लिए नाकारा हो जाए और लोग यहाँ से निकल जाएं, बस्ती खाली कर दें। इसलिए उन्होंने 20-20 रुपए मजदूरी देने का प्रलोभन देकर उसी बस्ती के कुछ एक राज मजदूरों को पकड़ लिया था। बहुत से लोगों ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन मेहरू जैसे कुछ बेरोजगार लालच में आ गए थे। बसंती ने देखा कि बस्ती की एक छोटी सी लड़की पुलिस वालों के पहरे के बावजूद लाठियों की बाड़ के नीचे से निकलकर भागती हुई कोठरी के अंदर गई। पृष्ठ संख्या 27। और कुछ ही क्षण बाद हाथ में काली मिट्टी की बनी पैसे जमा करने की अपनी बुघनी उठाए भागती हुई लौट आई। उसे देखकर बसंती को सहसा अपनी कोठरी की याद आई। बसंती ने भी अपनी कोठरी की पिछली दीवार में एक ढीली ईंट को निकालकर उसके नीचे कांच की चार चूड़ियां, बालों को लगाने वाले दो हरे रंग के क्लिप और एक पीतल की अंगूठी छिपा रखी थी। उसका भी मन हुआ कि वह भागकर जाए और उन्हें निकाल कर ले आए। तभी बसंती को अपने माँ बाप भी याद आए और वह उन्हीं कदमों भीड़ में से निकलकर गली के किनारे किनारे ढलान चढ़ने लगी। बारिश का जोर अब कुछ घट गया था, लेकिन ढलान के नीचे किनारे किनारे पानी की नाली बहने लगी थी। ढलान पर और कोठरियों के बाहर लोगों का सामान बिखरा पड़ा था। राजमिस्त्री मूलराज की कोठरी के बाहर बसंती को तोते का पिंजरा पड़ा नजर आया। तोता उसमें अभी भी बैठा था, सिकुड़ा डरा सा। एक जगह चूल्हे के ऊपर मिट्टी की हांडी अभी भी रखी थी और चूल्हे में आग जल रही थी। कुछ और ऊपर जाने पर बसंती को भीड़ में सासा अपने बाप का नीला कुर्ता नजर आया। बापू के सिर पर पगड़ी थी जो सिर पर रखे कनस्तर के नीचे दबी जा रही थी, और उसका शमला खुलकर बापू के गले में आ गया था। उसने कंधे पर बाल काटने के अपने सामान का थैला भी उठा रखा था। बसंती को अपने भाई रामू की भी हल्की सी झलक मिली। वह बापू का हाथ पकड़े ढलान उतर रहा था। उसने अपने हाथ में लैंप उठा रखा था। बसंती को माँ नजर नहीं आई। बापू को देखकर बसंती का मन हुआ कि भागकर उसके पास जाए, लेकिन फिर वह डर गई। बापू जोर से उसे पीटेगा, माँ भी पीटेगी। एक अनूठा सा विचार उसके मन में आया कि बापू के हाथ तो कनस्तर और थैले में उलझे हुए हैं, वह इस वक्त थप्पड़ कैसे मार सकता है। लेकिन बाप के गुस्से को वह जानती थी, वह इन चीज़ों को जमीन पर रखकर भी उसे पीट सकता है। वह अभी ठिठकी खड़ी बापू की ओर देख ही रही थी कि बापू फिर भीड़ में खो गया। बापू के आंखों से ओझल हो जाने पर बसंती कोठरी की ओर नहीं गई, बल्कि धीरे धीरे ढलान उतरने लगी और भीड़ में शामिल हो गई। उसे मन ही मन आभास हुआ कि कोठरी में लौटकर अपने क्लिप और चूड़ियां लाने में अब कोई पृष्ठ संख्या 28 तुक नहीं रह गई है। सड़क पर पहुंचकर बसंती फिर सब कुछ भूल गई थी और बड़ी उत्सुकता से आसपास का नज़ारा देखने लगी। सड़क पर पटरी के साथ साथ लारियां ही लारियां खड़ी थी। यहाँ भी जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था और बड़ा शोर था। बस्ती के लोग घबराए हुए लपक लपक कर लारियों पर चढ़ रहे थे। बारिश थम गई थी और अब केवल हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। पुलिस के सिपाही लाठियां उठाए और लोहे के टोप पहने दूर तक सड़क पर खड़े थे। बारी बारी से खाली लारियां भर रही थी। बस्ती के सामने एक खाली लारी खड़ी थी। जो ही उसका पिछला पल्ला उतारा गया, पटरी पर खड़े लोग उचक उचक कर अपना सामान उसमें फेंकने लगे। कुछ लोग टीन कनस्तर उठाए हुए ही उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर भी सिपाही बहुत थे और लोगों को अपना ढेरों सामान लादने से रोक रहे थे। हिम्मतू रंगसाज भी इसी लारी में अपना सामान फेंक रहा था। वह लारी के पिछले पहिए पर पांव रखकर और ऊपर से पल्ले को पकड़कर एक ही बार में उचक कर सीधा लारी पर चढ़ गया और नीचे खड़ी उसकी पत्नी सामान उठा उठा कर उसे पकड़ाने लगी। उसकी पत्नी ने घूंघट काढ़ रखा था। अभी लोगों का सामान चढ़ ही रहा था कि पुलिस वाला डंडा पटपटाता हुआ पहुंच गया। यह क्या हो रहा है? उसने लारी पर रखे सामान को देखकर कहा। फिर वह भी पहिए पर पांव रखकर ऊपर से कूद गया। इतना सामान रखने तो पूरी की पूरी लारी एक घर को मिले। उतारो यह सब सामान, हटाओ यहाँ से। और उसने अपने हाथों से एक के बाद एक दो खांटे उठाकर नीचे पटक दी। इन्हें लाना हो तो पैदल लेकर आओ, लारी में जगह नहीं है। और उसने लारियों पर खाट चढ़ाने की मनाही कर दी। जब पुलिस वाला उतर कर चला गया तो हिम्मतू ने फिर से अपनी दोनों खाटें चढ़वा ली। इस पर लारी पर खड़े बस्ती ही के आदमियों ने उसकी खाटें उठाकर नीचे फेंक दी। हमें नहीं ले जाने देते तो तुम कैसे ले जाओगे? इस पर पटरी पर खड़े हिम्मतू के दोनों बच्चे चीख चीख कर रोने लगे और उसकी माँ हाथ पसार पसार कर गालियाँ देने लगी। पृष्ठ संख्या 29। यह हटभंग चल ही रहा था कि लारी वाले ने इंजन चला दिया। हिम्मतू अभी भी सामान पकड़ाने के लिए चिल्ला रहा था। लारी में हरकत आई तो वह घबरा कर चीखा, छोड़ दे छोड़ दे, ला बच्चों को ला, जल्दी कर, ऊंचा उठा और ऊंचा उठा। थकी हारी हिम्मतों की पत्नी से बच्चे ऊंचे नहीं उठाए जा रहे थे। गीले घूंघट में से उसे ठीक तरह से नजर भी नहीं आ रहा था। तभी लारी पर खड़े और लोगों ने हाथ बढ़ाया और बारी बारी से दोनों बच्चे चढ़ा लिए गए। पर जब तक हिम्मतू की पत्नी के चढ़ने की बारी आई तो लारी की रफ्तार तेज हो चुकी थी। हिम्मतू की पत्नी अभी लारी के सहारे भाग रही थी और लारी पर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, रोको रोको, गाड़ी रोको, औरत गिर पड़ेगी। हिम्मतू की पत्नी ने आखिर दौड़ना छोड़ दिया और हाँफती हुई सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। लारी नहीं रुकी। लारी पर खड़ा हिम्मतू हाथ ऊंचा उठाए चिल्ला रहा था तो दूसरी लारी पर आ जा, दोनों खाट ले आना। पर हिम्मतू की पत्नी की समझ में कुछ नहीं आया और वह रोती बिलखती सड़क के किनारे बैठ गई। इस शोरगुल में कोई चढ़ पाता, कोई पीछे छूट जाता। जिस जगह हिम्मतू की पत्नी बैठी थी वहीं पास में विशेषर की अंधी माँ छोटी सी छड़ी हाथ में लिए बैठी थी और बुदबुदाए जा रही थी, इधर विशेषर होगा, इधर मेरा विशेषर होगा, मुझे विशेषर के पास पहुंचा दो, कोई माई का लाल, डॉट डॉट डॉट। बस्ती से अभी भी लोग निकलते जा रहे थे। एक जगह पर लारियों के पास से भीड़ को पीछे हटाने के लिए तीन चार सिपाही लाठियां झुलाते हुए उनका पीछा करने लगे और बस्ती के लोग भागने और तितर बितर होने लगे। बसंती पटरी पर चलती हुई कभी एक जगह खड़ी हो जाती तो कभी दूसरी जगह सामान चढ़ाने की उतावली में किसी आदमी का गट्ठर नीचे आ गिरा था और गिरते ही उसकी गांठ खुल गई थी और उसमें से कड़ाहियाँ, जूते, गाढ़े के कपड़े बिखर गए थे। एक लोटा तो लुढ़कता हुआ सड़क के बीचों बीच जा पहुंचा और सड़क पार से एक काला सा लड़का भागता हुआ आया और उसे झपट कर उठा ले गया। सड़क के पार रमेश नगर में रहने वाले बहुत से बाबू लोग आकर खड़े हो पृष्ठ संख्या 30 गए थे। कुछ ने बस्ती के अनेक मर्द औरतों को पहचान भी लिया था क्योंकि इन्हीं के घरों में बहुत सी औरतें चौका बर्तन करती थीं और आदमी रंग रोगन और सफेदी करने आते थे। वह भी बस्ती के तोड़े जाने का तमाशा देख रहे थे। बसंती बहुत से लोगों को पहचानती थी, कुछ एक के घरों में काम भी कर चुकी थी, पर इस वक्त उसकी आंखें श्यामा बीबी को ढूंढने में लग गई थीं। उसे विश्वास था कि जरूर श्यामा बीबी भी वहीं पर होंगी और वह सड़क पार करके उस ओर जा पहुंची। कानून कानून है, क्या किया जाए? 4 नंबर ब्लॉक वाले अहूजा साहिब कह रहे थे। मैंने मूलराज से कहा भी था, मैंने कहा, मूलराज तुम कोठरियां पक्की नहीं करो, पक्की कोठरियां बनाना गैर कानूनी है। पक्की कोठरियां बनाना ही नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जा करना ही गैर कानूनी है। बैठे बैठाए मुफ्त में अपनी कोठरियां खड़ी कर ली। सड़क के पार खड़े लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। उनके बीच में चलती हुई बसंती श्यामा बीबी को ढूंढती रही, पर वह उसे कहीं नजर नहीं आई और बसंती फिर लौट कर सड़क के इस पार आ गई। सड़क पार करके वह इधर पहुंची ही थी कि उसे लंगड़ा दर्जी नजर आया। वह लाल और पीले रंग का, घुटनों से नीचे तक का अंगरखा पहने हुए था और सिर पर बड़ा सा पगड़। उसकी ऐंची आँखों में काजल की लकीर थी। उसे देखते ही बसंती पहले तो ठिठकी, फिर उसे हंसी आ गई। वह उसके सामने खड़ी ही खड़ी, मुंह पर हाथ रखे हंसे जा रही थी। बसंती को मालूम नहीं था कि बुलाकी दूल्हा बना हुआ है और आज उसी को ब्याहने के लिए यह सज धज की गई थी। बसंती यह भी नहीं जानती थी कि अगर बस्ती तोड़ने वाले घंटा भर बाद में आते तो क्या मालूम। इस समय बसंती लगड़े दर्जी के टिन कनस्तर और गठरियां उठा रही होती। बुलाकी पहले तो बसंती को पहचान नहीं पाया, पर जब बसंती ने मुंह पर से हाथ हटाया तो लंगड़ा दर्जी सिर से पांव तक पुलक उठा। बसंती, बसंती रानी, और उसने अपनी बाहें फैला दी। पर बसंती पलक झपकते ही उसकी बाहों के नीचे से निकल गई और झट से भीड़ में खो गई। और लंगड़ा बुलाकी अपनी लाठी पटाता उचकता बसंती, बसंती रानी चिल्लाता हुआ उसके पीछे जाने लगा। पृष्ठ संख्या 31। लंगड़े दर्जी को चकमा देकर बसंती दो तीन लारियां पीछे छोड़ आई थी, जब उसे फिर अपना बाप एक गट्ठर बगल में दबाए भागता नजर आया। थोड़ी दूर पीछे उसकी माँ भागती आ रही थी। बापू के सिर पर से उसकी पगड़ी खुलकर गले में आ गई थी और शमला नीचे जमीन तक लटका हुआ था और उसकी नीले रंग की कमीज भीग कर उसके शरीर से चिपकी थी। माँ के कुर्ते के बटन खुले थे और वह सदा की भांति फटे हाल सिर पर कनस्तर और गठरी उठाए घिसटती चली आ रही थी। उसका पीला पीला चेहरा किसी मुर्दे के चेहरे जैसा लग रहा था। इस स्थिति में बसंती को अपने माँ बाप बड़े निसहाय और निरीह से लगे। भावना का ज्वार सा उसके दिल में उठा और वह लपक कर उनके पास जा पहुंची। आगे सभी लारियां भर चुकी हैं, खाली लारी इधर पीछे को रुकेगी, मैं देख आई हूँ, उसने बड़े आग्रह से कहा। बसंती की आवाज़ सुनते ही चौधरी ने घूम कर देखा। हरामजादी, तू कहाँ भाग गई थी? इधर रामू पीछे छूट गया है, जा उसे पकड़ ला। और वह झांक झांक कर लारियों के अंदर देखने लगा कि किस लारी में अपना सामान रखे। बसंती अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए मुड़ी ही थी कि वह स्वयं माँ बाप को ढूंढता हाथ में हरी के लैंप उठाए वहाँ पहुँच गया। यहाँ पर भी वही कुछ हुआ जो अन्य स्थानों में हो रहा था। भीड़ और शोर और धक्का मुक्की में बसंती का बाप एक लारी में अपना सामान रखने के लिए लपका। पहिए पर पांव रख कर वह ऊपर को चढ़ने को हुआ, पर चढ़ नहीं पाया और गिरते गिरते बचा। बसंती का दिल जाने कैसा हो उठा और वह दोनों हाथ उठाए आगे बढ़कर अपने बाप को संभालने लगी। चौधरी का कुछ सामान लारी के अंदर पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा पाया, पर दूसरे ही क्षण बसंती लारी के पहिए पर चढ़ गई थी और नीचे खड़ी माँ के हाथ से एक एक चीज लेकर लारी के अंदर फेंक रही थी। यहाँ भी वही हुआ जो अन्य लोगों के साथ हो रहा था। लारी चलने लगी और लोग चिल्लाने लगे। बसंती कूद कर नीचे उतर आई। बाप लारी के अंदर खड़ा था और माँ पटरी पर खड़ी घबराहट में रोने चिल्लाने लगी थी। और पृष्ठ संख्या 32। अपनी छाती पीटने लगी थी और लारी में खड़ा बसंती का बाप जोर जोर से चिल्ला रहा था, रामू कहाँ है रामू? हरामजादी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? उठा रामू को मुझे दे। बसंती रामू को कैसे उठा पाती, पर आसपास खड़े लोगों में से किसी ने रामू को ऊंचा उठाया। उधर लारी में से भी हाथ लपके और रामू को लारी में चढ़ा लिया गया। माँ भागती हुई लारी के पीछे गई। रोको रोको की आवाज़ आई, पर इस बार लारी सचमुच रुक गई और माँ भी जैसे तैसे खींच खाँच कर चढ़ा ली गई। पर जब लारी ने रफ्तार पकड़ी तो बसंती सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और लारी दूर होती जा रही थी। बसंती का मन फिर से जाने कैसा हो रहा था। माँ बाप और रामू को दूर जाते देख उसके गले में कांटे से चुभने लगे थे। रामू को ले गए हैं और मुझे पीछे छोड़ गए हैं। पर यह विचार मन में आते ही बसंती ने स्वभाव अनुसार सिर झटक दिया। लारी पर चढ़ना क्या मुश्किल है, पहले पहिए पर चढ़ जाओ, फिर कुंडे पर पांव रखो और फिर तख्ता पकड़कर अंदर कूद जाओ। जैसे मैं अपने आप नहीं चढ़ सकती। बसंती कुछ देर तक वहीं ठिठकी खड़ी रही और फिर सड़क पार करके रमेश नगर के घरों की ओर बढ़ गई।